الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 131 نمبر آیت سے آج ہم پڑھیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جب آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر صبح صبح نکلے تھے مومنین کو ان کے پوزیشنز کو سنبھالنے کے لیے کہہ رہے تھے جنگ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اوپر جو بات چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کا اختتام یہاں پر ہوا تھا کہ ان اللہ بما یعملون محیط, اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے کاموں کو پوری طرح سے گھیرے ہوئے, یعنی اللہ کی معلومات میں ہیں, گرفت میں ہیں, کوئی اللہ کی معلومات سے باہر نہیں ہے, اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے کوئی چیز. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ اللہ کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ. اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں احد کی جنگ سے. تو فرمایا کہ جب آپ صبح صبح اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے میدان جنگ میں پہنچے اور آپ مومنین کو کھڑا کر رہے تھے کہ فوج یہاں کھڑی ہوگی, تیر اندازوں کا دستہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوگا, تو یہ آپ جب حکم دے رہے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا, آپ لوگوں کے سارے عمل کے اوپر نگران تھا, محیط تھا ان کے اوپر. یہ ظاہر ہے کہ جو جنگی معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک بصیرت تو سپہ سالار کی ہوتی ہے اور دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ جنگ میں شریک سپاہیوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں یا نہیں. تو جنگ انہی دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے کہ اگر سپہ سالار نے فیصلے غلط کیے, پوزیشن جو مقرر کیں وہ غلط کیں, تو جنگ ہاری جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ سپاہی اگر اپنے مقام پر کھڑے نہ رہیں تب جنگ ہاری جاتی ہے, یا سپاہی جو ہیں وہ فرما بردار نہ ہوں سپاہ سالار کے. تو اب یہ پورا ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری بات کو کر دیا کہ گھر سے نکلے پھر میدان جنگ میں پہنچے اور پوزیشن سنبھال لی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سمیع و علیم تھے, یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے جو کچھ باتیں ہو رہی تھیں وہ سب کچھ ہو رہا تھا. اِذْ ہَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ جب دو گروہوں نے تم میں سے ارادہ کر لیا کہ وہ بزدلی دکھائیں گے, ہمت چھوڑ بیٹھیں گے. وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا, جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ولی سازگار تھے, مددگار تھے, وہاں موجود تھے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور بھروسہ اللہ ہی پر کرتے ہیں مومن جو ہیں. اب یہ دو گروہ جو تھے اوس اور خزرج کے قبیلوں کے چھوٹے قبیلے تھے دو, انہوں نے میدان جنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. پیچھے آپ لوگوں نے جو سیرت پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 313 لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گئے تھے, وہ سارے کے سارے لوگ. اور ان دو قبیلوں کے اندر بھی ذرا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب کیونکہ ادھر 1,200 لوگ تھے 2,000 کے قریب, اور ادھر اب 1,000 ٹوٹل گئے تھے اور 300 اور نکل گئے, تو باقی 750 رہ گئے. تو اب یہ ڈر پیدا ہو گیا ان دونوں گروہوں کے اندر کہ کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلوں میں حوصلہ ڈالا تو یہ قائم رہے وہاں پر, واپس نہیں آئے اور جنگ میں شریک ہوئے. لیکن اِذْ ہَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا, کہ جب دونوں ابھی ارادہ باندھ رہے تھے کہ اپنا حوصلہ ہار دیں, تو ہمت اور ان تفشلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دل ٹوٹ رہے تھے, اندر حوصلے شکست ہو رہے تھے. لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ ولی ہیں, یہ میدان جنگ ہو یا دعوت کا میدان ہو, حق گوئی کا موقع ہو یا حق پر قائم رہنے کا موقع ہو, یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، خواہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ آزمائش کے لیے ہو. یہ بات سمجھنے کی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں مدد کرنے کے لیے، وہ ہمیں دشمنوں کے خلاف، مخالفین کے خلاف شکست نہیں ہونے دیں گے. ایک اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزمائش میں اتارنا چاہتے ہیں آپ کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ہے. کیا مخالفین جیتیں گے؟ مخالفین کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ لوگوں کو نقصان ہوگا، یہ بھی اللہ کا ساتھ ہے. تو واللہ ولیہما میں دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے. ہمارے ہاں ادھر بہت مسئلہ ہے، کم از کم پاکستان کی حد تک کہہ سکتا ہوں، کہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، اچھا پتہ نہیں میں نے تو کوئی برائی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس مصیبت میں ڈال دیا. یہ عام سوال ہے ہمارے ذہنوں میں. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا مطلب یہ ہے، مولانا اصلاحی ہمارے استاد تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر لمبے عرصے تک آزمائش نہ آئے تو سوچو کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے فراموش تو نہیں کر دیا. یعنی یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو جانا چاہیے کہ آزمائش کیوں نہیں آ رہی، مجھے اللہ نے کیوں آرام سے چھوڑ رکھا ہے، کہیں میرے اندر خرابی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منہ تو نہیں پھیر لیا مجھ سے، اور اگر منہ نہیں پھیرا ہے تو پھر آزمائش کیوں نہیں آ رہی ہے. تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر دو سال میں آ جائے، لیکن صحابہ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سال میں ایک دو دفعہ ضرور آزماتا ہوں. ہمارے لیے قانون ذرا نرم ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے شہداء اپنے چننے ہوتے ہیں صحابہ کی شکل میں، ان کے لیے پھر ذرا سخت چکی چلتی ہے، اور جو اس چکی میں سے بچ کے نکل جاتے ہیں اس کو وہ پھر شہداء اور صدیقین کہلاتے ہیں. ہمارے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ چنتے رہتے ہیں، لیکن بھر اتنی تیزی اور اتنی سختی کے ساتھ نہیں. تو واللہ ولیہما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، خواہ وہ کچھ مشکل میں ڈال کر نکالے یا مشکل میں لمبا ڈال دے، ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزمائش نہیں آئے گی، لیکن اس جگہ پہ مطلب یہی تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا، اللہ ساتھ تھا. ایک آزمائش آ گئی ہے کہ عبداللہ بن ابی چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس کے 300 کے قریب ساتھی بھی، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات تھی؟ اللہ ہی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، منافقین کو جانا ہی جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے بلکہ ایک موقع پر یہ بھی کہا ہے قرآن مجید میں کہ ان کو ساتھ، ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا ساتھ، کیونکہ جو منافق اگر میدان جنگ میں ہے اور وہ میدان جنگ میں بزدلی پھیلا دے تو وہ سنبھالنا بعض وقت ناممکن ہو جاتا. تو اس لیے یہ واضح رہنا چاہیے کہ واللہ ولیہما کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر موقع پر، اس لیے ہمارے ہاں پھر ایک تصور پیدا ہوا کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ بزرگ اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے اور ہماری مرضی کی دعا قبول ہو جائے گی. حالانکہ ان کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کو اپنی بات منوا لیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی ولی ہوتا ہے اور ہمارا بھی ولی ہوتا ہے، اور جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں مومن جو ہے. اب یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پر جس موقع پر یہ آیا ہے کہ دو گروہ بھروسہ اللہ پہ ہار بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنین ہی اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھروسہ کرنے کے لیے، اللہ کو ولی ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اپنے بعض اوقات صرف بنیادی معنی میں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بعض اوقات اپنے بعض پہلوؤں سے آ جاتا ہے. یہاں اس پہلو سے آیا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھروسے والا ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایمان والے ہی اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے. خالی ایمان یہاں زیر بحث نہیں ہے. یہ آگے تقویٰ بھی آئے گا، تو تقویٰ بھی بعض اوقات اپنے بنیادی معنی میں آ جاتا ہے، بعض اوقات اس کا کوئی پہلو وہاں مراد ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے وہی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اس معنی میں مومن ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قابل بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرح جذباتی نہیں ہے کہ غلط فیصلے کریں گے، اور ये भी कि अगर आगे चल के अल्लाह ताला कानून बताएंगे कि मैं कब मदद करता हूँ, कब वली होता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नाम लेवा तौर पे खड़े हैं कि लो जी मैं तो मुसलमान हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, परहेजगारी करता हूँ, तो अल्लाह की मदद आ जाएगी। नहीं, उसके कुछ और शराइत भी हैं। तो आगे चल के अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे, उस वक्त तक हम उसको, क्योंकि अल्लाह की ज़ुबान में बात को समझना ज़्यादा मौसर होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो उहद का दिन, कि जब आप सुबह सुबह घर से निकले और आपने मैदान जंग में जाकर अपने साथियों को पोजीशन दे रहे थे कि यहाँ काफिला लश्कर खड़ा होगा, वहाँ दाएं जाने वाले, वहाँ बाएं जाने वाले, वहाँ दरमियान वाला लश्कर, और तीरंदाज उस पहाड़ी टीले पर खड़े होंगे। तो ये आप जब फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला आपकी सारी बातें सुन रहे थे और जानते थे, और इसी मौके पर दो ग्रोहों ने तुम्हारे अंदर से हौसला हारने का फैसला कर लिया, यानी वो इरादे बांध रहे थे कि वापस चले जाएं कि नहीं। उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी कि हम नहीं लड़ेंगे, थोड़े रह गए हैं, उधर लोग ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ था, और अलबत्ता जो ईमान वाले हैं वही अल्लाह पे भरोसा करते हैं, जिनके अंदर ईमान ना हो वो भरोसा नहीं करते। तो गोया इन लोगों ने अल्लाह पे ईमान का एक इज़हार किया, पहले डामाडोल हुए लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया। आगे फरमाया वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, इन दोनों ग्रोहों को ख़ास तौर से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए था, घबराना नहीं चाहिए था, हौसला नहीं हारना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बदर में तो अल्लाह तुम्हें गलबा दिला चुके। नसर जो है बाज़ुकात मदद के लिए सिर्फ, और बाज़ुकात मदद और गलबे दोनों के लिए आता है। मैं गलबे का तर्जमा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें फतह दिला चुके हैं। बदर में तुम थोड़े थे, वान तुम अजिल्ला, तुम थोड़े से थे, और अजिल्ला का लफ्ज़ बोल के सिर्फ तादाद की कमी नहीं बताई बल्कि ये भी बताया कि तुम्हारे पास असलिया भी थोड़ा था, घोड़े भी थोड़े थे, तीर भी थोड़े थे, तो कमाने भी थोड़ी थी। इस सूरत हाल में मैंने तुम्हें मदद की थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया? उहद में तो तुम्हारी तादाद बेहतर है, सामान जंग भी बेहतर है, तो अब तुम्हें क्यों घबराते क्यों? मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। फत्तकुल्लाह, तो इसलिए अल्लाह से डरो। अब यहाँ अल्लाह से डरो सादा मानी में नहीं है, बल्कि ये कि जो बदर के हवाले से जो तुम्हारा तकवा बनता है वो ये कि अल्लाह पे भरोसा करके मैदानी जंग में खड़े रहो, ये तकवा। तो तकवा बाज़ का तो ये होता है कि मैं बस सच बोल रहा हूँ, जान जानी है तो चली जाए। तो तकवा ये भी है, बाज़ का तकवा ये भी है कि घर में फाके हैं और मैं सौदा पूरा तोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुनाफा होना है, आटा आए ना आए घर वालों के लिए, बस मैं खड़ा हूँ तकवे पर। बाज़ का तकवा ये है। तो तकवा बाज़ का तो अपनी अमली शक्ल में मतलूब होता है। तो अगर तकवा पूरा वो जामे मानी में आपका बुनियादी तकवा आपके पास नहीं है, तो फिर ये जुज़वी तकवा भी, अमली तकवा भी सामने नहीं आता। तो फरमाया कि तुम्हें तकवे से काम लेना है, यानी साबित कदम रहना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ये तकवे के यहाँ मानी है। और ज़ाहिर है कि ये इसलिए पैदा होंगे कि अल्लाह ताला पे भरोसा है हमारा। तो अल्लाह ताला पे भरोसा है तो इसलिए अल्लाह के भरोसे पर खड़े रहना, मैदान जंग में भागना नहीं, सच्चाई पर खड़े रहना नुकसान के बावजूद, ये तकवा हो जाएगा। तो एक आदमी जो इसलिए सच बोलता है कि अल्लाह से डरना है, अल्लाह की खातिर खड़ा है, तो ये तकवा ही, इससे बड़ा तकवा और क्या होगा? तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अहमियत रखती है बात, कि आप किस मौके पर कौन सा लफ्ज़ बोल रहे हैं। अगर आप किसी मौके पर तकवा बोलेंगे तो तकवा कोई अमली शक्ल होगी, तकवा कोई कौल की शक्ल होगी, तकवा कोई आपके तसव्वुरात की शक्ल में होगा, कभी आमाल की शक्ल में होगा। तो यहाँ तकवा जो है वो अपने इस अमल की सूरत में है कि तुम अल्लाह से डरो, यानी मैदान जंग में साबित कदम रहो, उसके भरोसे को छोड़ कर नहीं जाओ। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। शुक्र के ऊपर मैं पहले ही बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ कि शुक्र का मतलब हमारे यहाँ उर्दू में बहुत ही महदूद सा है, छोटा सा है, कि बस जैसे ज़ुबान से शुक्र अदा कर देना, जैसे हम किसी का तोहफा लेकर शुक्रिया अदा कर देते हैं। नहीं, शुक्र का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के साथ या किसी के भी साथ उसके रवैये के मुताबिक, उसके मकाम के मुताबिक, उसके देने और दिलाने के मुताबिक हम अच्छा रिस्पांस दें। कि کہ مثال کے طور پر اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو میں اللہ کا بندہ بن کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے تو میں اس کا بندہ بن کر رہا ہوں، یہ چیز جو ہے یہ شکر ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے ایکنالج کیا چیزوں کو، اس کے رویے کو، اس کے انعامات کو، اس کے جو بھی اس نے ہمیں عطا کیا ہے. تو اب فرمایا کہ تمہارا میدان جنگ میں قائم رہنا، خدا کا بھروسے پر قائم رہنا، یہ تمہاری شکر گزاری ہے. تو اپنی شکر گزاری پر قائم رہو. فتق اللہ لعلکم تشکرون، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جو عمل ہے وہ پیدا ہو. وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے کہ جو کسی کے اچھے رویے پر برا رویہ اختیار کرے، کسی کے عمل کے جواب میں برائی کر دے اس کے ساتھ. نمک خوار ہے تو نمک حلال کرنا چاہیے، اگر کوئی تحفے میں کوئی چیز دے گیا ہے تو اس کی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کی نیکی کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی مشکل میں کام آیا تو اس کی مشکل میں کام آنے کو یاد رکھنا چاہیے. یہ لازمی چیزیں ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آدمی نہ شکرا ہے نہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں کھلایا پلایا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں. اور میں جیسے پہلے ابھی واللہ ولیہما میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب آزمائش لازمی حصہ ہے. وہ اللہ کے ولی ہونے کے خلاف نہیں ہے. جب کوئی آپ کا عزیز فوت ہو جائے، یا کوئی آپ کو نقصان ہو جائے، یا کوئی آپ کو دھچکا لگے، کوئی آپ تکلیف پہنچے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہو گئے. وہ اللہ کی ولی ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی مشکل میں ڈال کر اور بڑی مشکلات سے بچا لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایک بڑی مشکل میں ڈال کر آپ کو گناہ جھاڑ دیتے ہیں. آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر کیا کیا جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو بیمار بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کہ آپ تیمارداری کرنے گئے، تو وہ کچھ بخار چڑھا ہوا تھا شدید ان کو، تو بخار کو کچھ برا بلا کہنے لگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، بندہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے. تو اس لیے جو ہماری تکلیفیں ہیں وہ ہمارے لیے انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ اللہ کی دوستی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ جب وہ ہمارے گناہ جھاڑنے کے لیے کسی تکلیف کو بھیج کر ہمارے لیے کفارہ بنا دیتے. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ آپ کو دو ہفتے کے بخار سے آپ کو جنت کے راستے کے لیے کوئی دروازہ کھول دیا جائے، تو اور کیا چاہیے. تو اس لیے دنیا میں جتنی مشکلیں ہیں، کوئی نقصان ہوگا، کوئی بیماری آئے گی، کوئی فوت ہو جائے گا، کوئی چوٹ لگے گی، کوئی دکھ ہوگا، کوئی رنج ہوگا، وہ سارا کا سارا خدا کی دوستی ہے. تو اس کو شکر گزاری کی نیت سے دیکھنا چاہیے. تو اس لیے فرمایا فتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جو رویہ جس موقع پر چاہیے ہوتا ہے وہ کرتے رہو. اگر میدان جنگ ہے تو میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، اگر ناپ تول کا میدان ہے تو ناپ تول میں بھی دیانتداری کے ساتھ ناپ تول کرتے رہو، اگر کوئی بات کہنی ہے تو بات کہتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ سچائی کہتے رہو. یہی تقویٰ. تقویٰ عملی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. جتنی بھی یہ تصوراتی چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر کہیں نہیں پڑی ہوتی. مثلا اگر میں آپ کو پوچھوں کہ والد کا فرما بردار ہونے کا کیا مطلب ہے، تو آپ مثالیں دینی شروع کر دیں گے کہ جی وہ ماں باپ کو پانی پلاتا ہے، جی ان کا بیماری میں علاج کرواتا ہے، جی بڑا خدمت کرتا ہے، کپڑے سلاتا ہے، ان کے کوئی سر دباتا ہے، کوئی ان کو کھانا کھلاتا ہے. تو یہ فرما برداری کا شکلیں ہیں، والدین کی فرما برداری کی یہ صورتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ہم فرما برداری کہیں گے، نہیں، فرما برداری کی اجزاء ہے. تو تقویٰ بھی ایسی چیز ہے کہ تصور ہے، وہ عملی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. فرما برداری جو میں کسی نوجوان کو دیکھوں اپنے والد کا سر دبا رہا ہو تو میں کہوں بڑا فرما بردار بچہ، سعادت مند بچہ. تو یہ کیا میں نے کیا، جو فرما برداری ہے اس کی کیٹیگری میں اس کو ڈال دیا ہے کہ سر دبانا یا پاؤں دبانا یا والد کی خدمت کرنا یا ان کو کوئی کھانا کھلانے کے لیے بیٹھ کے خود کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فرما بردار ہے، یعنی اس کی صورتیں ہیں. تو ایسے تقویٰ بھی اپنی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کہیں نماز کی صورت میں، کہیں روزے کی صورت میں، کہیں ناپ تول کی صورت میں، کہیں چگلی سے بچنے کی صورت میں، کہیں گالی دینے سے بچنے کی صورت میں تقویٰ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا شکر، کیونکہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ شکر ہے. تو جب میں کسی کو گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، मैं किसी सौदा के पैसे लेकर उसको पूरा सौदा तोल कर देता हूँ। जब मैं बद्यांती नहीं करता खुदा की वजह से, तो ये मैं शुक्र कर रहा होता हूँ। और जब मैं पैसे आने के बाद गलत कामों में नहीं पड़ता, अलल तलल नहीं करता, अयाशियाँ नहीं करता, तब भी मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा होता हूँ। तो शुक्र के ये दोनों पहलू हैं कि मैं मायूसी से, घबराहट से, गलत कामों से, गलत रवैयों से बचा खुदा के भरोसे पर, तो ये भी शुक्र है। और मैं नेमतें आने के बाद बिगड़ नहीं गया, तकब्बुर का शिकार नहीं हो गया, तो ये भी शुक्र है। अब जब ये लोग चले गए मैदान ओहद में से और ये दोनों कबीले जो हैं ज़रा संभल गए, तो अब संभलने के लिए नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तकरीर फरमानी पड़ी। ज़ाहिर है कि सिपा सलार का काम यही होता है, और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिपा सलार भी थे, रसूल भी थे, और तो आपने एक तकरीर फरमाई। इस तकरीर में यानी इन दोनों कबीलों का हौसला बढ़ाने के लिए कि ये ना चले जाएं तो बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, तो आपने एक तकरीर, उस तकरीर में आपने एक बात कही, इस्तकूलु लिल्मुमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। तो आप कह रहे थे मोमिनीन को कि ये 300 लोग चले गए तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों से। तो वो 300 लोग, 3000 फरिश्ते, तो एक खतीब का अंदाज़ है जो आपने इख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप अगर अहदीस को में से वो हदीसें चुन लें जिसमें तकरीरें हैं, एक तो होती है ना आम गुफ्तगू की बातें, एक तकरीरें हैं आपकी, तो आपकी तकरीरें अरबों के जो खतीब थे उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसमें खिताबत के जौहर वैसे ही हैं जैसे कि खतीब आला खतीब के होते हैं। नफे तुले जुमले, छोटे जुमले, खूबसूरत जुमले, उनमें से एक जुमला ये भी देखिए जो यहाँ अल्लाह ताला नकल किया है कि जब आप मोमिनीन को कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि इन 300 के बदले में 3000 फरिश्ते आसमान से उतरते हुए आ जाएं मदद करने के लिए। अब ये जाहिर है कि एक सिपा सलार की, एक सरदार की, एक मैदान जंग में खड़े हुए लीडर की एक तकरीर का जुमला है जो अल्लाह ताला ने नकल किया है, और इस जुमले के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी तस्दीक कैसे कायम किया। लेकिन पहले इस जुमले के टुकड़ों को समझ लीजिए। जब आप मोमिनीन के फरमा रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि मदद को आए, कि मदद करे तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों के ज़रिए से, मुनज़लीन, जो मुसलसल उतरते रहें। ये जो उतरते रहें, ये भी ज़ाहिर है कि एक पैगंबर की कोई बसीरत है जो इसमें नज़र आ रही है कि फरिश्ते उतरते रहें, कि जैसे एक एक करके आ रहे हैं और दुश्मनों को कला कता कम सर कलम करी किए जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं कतर, तो ये एक मंजर है जो आपने बयान कर दिया। तो अब जाहिर है कि मोमिनीन के लिए ये बड़े ही हौसले की बात होगी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि 3000 फरिश्ते हमारी मदद को उतराएंगे और इन 300 के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहाँ टोटल तादाद 1000 के करीब है और उसमें 3000 फरिश्ते शामिल हो जाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने तस्दीक किस तरह से की उसको देखिए, भला क्यों नहीं, यानी आप फरमा रहे थे कि 3000 उतरेंगे तो फरमाया क्यों नहीं, इन तस्बिरु व तत्तकु व यातुकुम मिन फौरहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बे खमसते आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्वमीन। कि क्यों नहीं, अगर तुम साबित कदम रहे और तुम तकवा इख्तियार करते रहे तो दुश्मन अचानक तुम्हारे ऊपर हमलावर हो जाए तो तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये मकाम उन मकामात में से भी है जिसमें लोग ये समझते हैं कि कुरान मजीद में तजाद पैदा हो गया है कि नबी सल्लम कह रहे हैं कि 3000 फरिश्ते, अल्लाह ताला कह रहे हैं 5000 फरिश्ते। तो मैंने उसकी हिकमत बता दी है कि एक नबी अकरीम सल्लम का हौसला बढ़ाने का वादा है, उसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं किया कि आपके इस वादे को कबूल किया, बल्कि ये कहा है कि मैं 2000 और बढ़ा दूँगा। ये जुमला है, ना कि कोई तजाद है कि पहले 3 कहा गया फिर 5 कहा गया। तकरीर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ताईद आई है। तो जो मैं पहले कह रहा था कि अल्लाह वली है लेकिन उसकी कुछ शरायत होती हैं, खाली ईमान दिल के अंदर बस, उसके बाद आप शरायत पूरी ना करें तो अल्लाह की मदद नहीं आती। तब जो मदद के लिए यहाँ अल्लाह ताला फरमाया कि हाँ 3,000 फरिश्ते क्या 5,000 भी आएंगे, लेकिन तीन शर्तें हैं, इन तस्बेरू, पहली ये कि तुम साबित कदम रहोगे, मैदान जंग में भागोगे नहीं, बुजदिली नहीं दिखाओगे, वतत्तकू, और दूसरी ये कि तकवा इख्तियार करो। अब तकवा पीछे आप पढ़ चुके हैं कि ये एक लंबी बहस चल रही थी, तकवा यहाँ ये पहला तकवे का हिस्सा है कि तुम यहूद को अपना राजदार दोस्त नहीं बनाओगे, पहला तकवा यहाँ ये ज़ेर बहस आया था। दूसरा तकवा ये ज़ेर बहस आया था कि तुम ये जो पहला तकवा जो मैंने अर्ज़ किया है ये आपको मिलेगा आयत नंबर 121 में, 120 नंबर में, ठीक है जी। तो ये 120 नंबर में आपको मिलेगा, और ये जो तकवा है वहाँ भी यही जुमला है, वाइन तस्बेरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो यहाँ पर ये तकवा है। और जो 28 नंबर आयत में हमने देखा था कि वहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि तुम अगर इनसे दोस्ती करोगे तो मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर फरमाया था कि इल्ला अन तत्तकू, अगर तुम पूरी तरह से उनसे बच जाओ। तो अब वो जो तकवा है, वो ये तकवा जो पीछे गुजरा कि मैदान जंग में मजबूती से खुदा के भरोसे पर कायम खड़े रहोगे, तो ये दो बातें इसके अंदर हो गई, एक ये कि दोस्ती नहीं करोगे, अल्लाह के दुश्मनों से दूर रहोगे, और राजदारी वाली दोस्ती नहीं करोगे। दूसरा ये फरमाया कि ये जो इन तस्बरू व तत्तकू वाला तकवा है कि मैदान जंग में जो तकवा चाहिए होता है वो तुम इख्तियार करोगे, और तीसरा तकवा यह है कि तुम खुदा के भरोसे पर कायम रहोगे। तो अब जो पीछे दो ग्रुप भागे थे, भागना चाहते थे, एक ग्रुप भाग गया था, उन सबको यहाँ असल में बताया कि अब्दुल्ला बिन उबई भाग गया, उसने तस्बरू का काम नहीं किया, बतत्तकू का काम नहीं किया, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा नहीं उसने रखा। और ये दो गुरोह जो थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर ठहर गए कि अच्छा 3,000 फरिश्तों की मदद आएगी तो बस ठीक है, फिर हमारा खौफ उतर गया। लेकिन इनके अंदर भी तकवे की कमजोरी थी, वो ये कि इन्होंने खुदा पर भरोसा कायम नहीं रखा, और ये जो फरमाया था वअलल्लाह फलयतवक्कल मोमिनून, तो इसकी खिलाफ वर्जी हुई थी कि मोमिनीन को तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, उनको तलवारों और अब्दुल्ला बिन उबई पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तो उनका नक्स है ईमान का कि वो खुदा को भूल कर अब्दुल्ला बिन उबई पर इंसार कर रहे हैं कि वो चला गया है तो हमारा अब क्या बनेगा। तो ये तत्तकू है। अब ये दो शर्तें हैं जो लाजमन पूरी होनी चाहिए, मैंने तीन बोला है, तो तकवे के अंदर दो सूरतें हैं, तस्बेरू का मतलब तो साबित कदमी हो गया, और तत्तकू के अंदर दो सूरतें हैं, एक तवक्कुल पे कायम रहने की, खुदा पे भरोसा करने की, लकड़ियों और तलवारों और अब्दुल्ला बिन उबई और 300 लोगों पर भरोसा करना तकवे के ख़िलाफ़ है, एक ये तकवा है। दूसरा तकवा वो है कि दुश्मनों के लिए वाज रहना चाहिए कि उनके साथ मोमिनीन को नुकसान पहुंचाने वाली दोस्ती नहीं हो सकती। तो फरमाया कि अगर ये तीनों काम तुम करते हो तो दुश्मन अचानक भी आ जाए, तुमने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, घरों में बैठे हुए थे, वयातुकुम मिन फौरहिम हाज़, वो अचानक आ पड़े तो क्या होगा, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफ मिन अलमलाइका, तो अल्लाह ताला 5,000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। बहुत बड़ा वादा है, सहाबा के लिए तो ईद हो गई जिस दिन ये आयत उतरी होगी कि अच्छा हम बिल्कुल सोए हुए हैं घरों में, और हमने दो शर्तें पूरी कर रखी हैं बदर में भी उहद में भी, और अब हम इस शर्तों को पूरा कर चुके हैं, तकवा भी है, हमने कोई दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं की, खुदा के भरोसे को भी कभी फरामोश नहीं किया, अब रात को सोते हुए भी दुश्मन आ जाएगा तो अल्लाह ताला मदद करने आ जाएंगे, ये अल्लाह ताला की मदद का कानून है। इसलिए उहद के मैदान में क्या हुआ कि जब जंग जीत गए मुसलमान, तो सहाबा की वो जो पलटून थी जिसको टीले पर खड़ा किया गया था, 50 के करीब सहाबा को, उन्होंने ख्याल किया कि जंग तो हमने जीत ली है, तो नबी सम का हुक्म जंग के लिए था तो वो उतर गए। बाद लोगों ने आज कुछ 3-4 साल पहले की बात है इस पर बड़ा मजाक बना दिया था, के सहाबा भाग गए थे, भागे नहीं थे, उन्होंने इज्तिहादी फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मतलब ही यही था कि बस जंग तक के लिए। ज़ाहिर है कि ये तो नहीं कहा गया था कि मैं घर चला जाऊँ तब भी तुम खड़े रहना टीले पर, जंग के लिए खड़ा किया था ना। तो उन्होंने इज्तिहाद किया कि जंग ख़त्म हो गई है तो उतर गए, जबकि जो हुक्म का दूसरा हिस्सा फरामोश हो गया कि जब तक मैं ना कहूँ। तो नबी करीम सल्लम का हुक्म आने से पहले वो उतर गए। इसको अल्लाह ताला ने यह कहा है कि तुमने मेरे रसूल की नाफरमानी की थी। तो जब वो उतर गए तो खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया, तो 70 सहाबा शहीद हो गए। लेकिन उहद भी मुसलमानों ने जीती है, इसको शिकस्त नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद का पीछा किया था। ऐसा नहीं हुआ था कि कोई हारने वाली फौज पीछा नहीं किया करती, बस खालिद बिन वलीद ने एक हमला किया और नुकसान पहुंचाते हुए निकल गए, बस उन्होंने कोई ठहर कर जंग लड़ने का इरादा नहीं किया। तो मुसलमानों को फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भेजा, फिर वो वापस नहीं पलट के आ सके। इसमें एक जो अहम लफ्ज़ है वो मुसव्विमीन का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुनज़लीन के उतारे जाएंगे मुसलसल, और अल्लाह ताला ने क्या जुमला बोला है मुसव्विमीन। तो ज़ाहिर है कि दोनों बातें ठीक है, उतरेंगे तो फरिश्ते तो उतरेंगे ही, लेकिन मुसव्विम होकर उतरेंगे। मुसव्विम का मतलब यह है कि जिसको आजकल हम मिज़ाइलों की शक्ल में गाइडेड मिज़ाइल कहते हैं, इसी तरह हर फरिश्ते को पता था कि मैंने किस किस को कत्ल करना है। किसी फरिश्ते को कहा गया था तुमने फलां 10 लोगों को कत्ल करना है, किसी को कहा गया था फलां 20 को करना है, फलां 100 को करना है। तो ये मुसव्विमीन का मतलब है। ये कुरान में पत्थरों के लिए भी आया है कि जब कौम लूत पर पत्थरों की बारिश हुई तो वो भी गाइडेड थे कि किस पत्थर ने किस के सर में लगना है, किस को मारा जाएगा, किसको ढेर किया जाएगा। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम। अब ये बहुत ज़बरदस्त बात है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने रसूल ने भी और मैंने जो भी तो बात की है तो ये तुम्हारे लिए बशारत बनाने के लिए की थी, और कोई मकसद नहीं था। और दूसरा मकसद ये था कि तुम्हारे दिल मजबूत हों, मुतमईन हों। लेकिन ये तुम्हें बात भूलनी नहीं चाहिए कि फरिश्ते मदद नहीं हैं, ये भूलनी नहीं चाहिए। ये ख्याल करो कि फरिश्ते उतरे तो मदद आ गई, नहीं। वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। फरिश्ते तो मैंने भेज दिए तुम्हारी तसल्ली के लिए, तुम्हारे इत्मीनान कल्ब के लिए। अगर मैं हूँ तो तभी फरिश्ते आएंगे, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो फरिश्ते नहीं आएंगे। बहुत खूबसूरत जुमला है ये, सारी उस हकीकत को बयान कर देता है कि बाज़ वक़्त हम पैसे पर इन्हिसार कर देते हैं, कितना पैसा आ जाए तो काम हो जाएगा, फलां आदमी आ जाए तो काम हो जाएगा, फलां चीज़ आ जाए तो काम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें मदद नहीं हैं, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी तसल्ली और बशारत के लिए तुम्हें कह दिया, और अल्लाह के रसूल ने भी कह दिया कि 3,000 फरिश्ते आएंगे और मैंने कह दिया कि 5,000 फरिश्ते आएंगे। तो याद रखो कि ये सिर्फ बशारत थी और तुम्हारे दिल को मुतमिन करने के लिए बात थी, मदद तो मेरी तरफ से आनी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ तो मदद मिलेगी, और मैं किसके साथ हूँ, इन तस्बिरु व तत्तकु। तो अगर फरिश्ते आ जाएं बिल्कुल तुम्हारे बीच में खड़े हैं और तुम इन दोनों चीज़ों से पीछे हट जाओ तो फरिश्ते वापस बुला लूँ। ये वो बात है जिसको समझना चाहिए। हमारी उम्मत जो पाकिस्तान में बसती है वो दीन की और खुदा की इन हकीकतों से वाकिफ नहीं है। वो समझती है कि खुदा ताला जो है वो बड़े मेहरबान हैं और बस हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, बस जो मर्ज़ी कर लें मदद आनी आनी। हाल क्या हुआ है कि अब लोग हमें कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। तो खुदा की मदद तब आएगी जब हम तकवे पर पूरे उतरेंगे, साबित कदमी पर, दीन पर साबित कदम रहे, तकवे पर कायम रहे, तो फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। फरिश्ते मदद नहीं है, तलवारें मदद नहीं है, अब्दुल्ला बिन उबई के 300 साथी मदद नहीं थे, मदद तो अल्लाह की है, अल्लाह की तरफ से आती है। और वो अल्लाह है कौन? अल-अज़ीज़ अल-हकीम। अब दो सिफात ऐसी हैं, और ये कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब अल्लाह ताला इस तरह के मौके पर अपनी दो सिफात लाते हैं तो एक नई दुनिया खुलती है। फरमाया कि मदद किसकी तरफ से आनी है? अल्लाह की तरफ से, जो अजीज़ है, सब पे ज़बरदस्त, सब पे कंट्रोल रखता है, कोई उसके आगे चूँचरा नहीं कर सकता। वो हुक्म दे दे फिरौन को बैठ जाएगा, ज़ुबान से बात भी नहीं निकलेगी। उस खुदा की तरफ से मदद आनी है। लेकिन ये जो अजीज़ खुदा है ये साथ हकीम भी है। ये फजूल में बेहुदा कामों में, गलत रवैयों पर, तकवा छोड़ने पर, अपना भाग जाने पर मैदान जंग से मदद नहीं करते। अल्लाह के असूल हैं, वो हकीम हैं, असूलों पर चलते हैं। ये नहीं कि बस तुम मेरे नाम लेवाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। नहीं, इसी ओहद में देखिए ना कि क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नफीस हस्ती खड़ी है, अल्लाह का आखिरी रसूल। यानी मेरा नहीं ख्याल के इंसानों ने कोई इससे बड़ा आदमी देखा होगा, वो खड़े। और उम्मत के बेहतरीन लोग अबू बकर, उमर, उस्मान, अली खड़े। लेकिन खालिद बिन वलीद कितना नुकसान पहुंचा गए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी कि आपके यहाँ पे जो खुद पहना हुआ था उसकी एक कड़ी जो है चेन की, वो घुस गई। और उसको निकालने में वैदा बिन अल जर्राह ने कोशिश की, नहीं निकली। दांतों से निकालने की, ऐसे पकड़ कर कोशिश की, दांत टूट गए उनके सामने वाले। तो अंदाज़ा की ना, हम तो आजकल वो लगाते हैं एनेस्थीजिया और निकाल लेते हैं, किस तकलीफ़ से निकाली गई होगी वो। तो कौन है? अल्लाह का रसूल। हुआ क्या है? सिर्फ 35 साहबा ने खुद इज्तिहाद कर लिया कि नबी अकरम सम के हुक्म से पहले उतर गए, और कुछ नहीं हुआ। तो अगर एक छोटे सी नाफरमानी वाली, वो नाफरमानी नहीं थी, एक छोटी सी फैसला है कि रसूल के कहने से पहले उस मोर्चे से हट गए, तो अल्लाह ने गिरफ्त कर ली, रसूल को चोट आ गई। जिनका कोई कसूर नहीं, वो साबित कदम है। खुदा ने दूसरे का बयान किया है कि इसमें तो तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उसवा था कि वो खड़े हैं, तुम सारे भाग गए फिर भी वो खड़े हैं। तो उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनको चोट लगी है, उनको जख्म आया है, तकलीफ में रहे होंगे, हफ्ता 10 दिन तो रहे होंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि जो अल्लाह का असूल है वो तस्बिरु व तत्ता के ऊपर खड़ा है, वो शख्सियात पर नहीं खड़ा है, वो नामों पर नहीं खड़ा है, वो सब्र और तकवे पर खड़ा है। तो ये जो चीज़ है, इसको हमेशा सामने रखिए कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह का साथ सिर्फ उन लोगों को हासिल है जो ये शर्तें पूरी करते हैं, दीन पर साबित कदम रहते हैं, और जहां जो करने का काम होता है वही करते हैं तकवे के लिहाज से। तो फरमाया कि मैंने, एक वजह यह थी कि तुम्हें बिशारत देना चाहता था, दूसरी वजह यह थी कि मैं तुम्हारा दिल मुतमिन करना चाहता था। लेकिन याद रखो कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, फरिश्तों से मदद नहीं आती, साथियों से मदद नहीं आती। और तीसरी ये बात फरमाई कि मैंने इसलिए ये किया, ले यक्ता तरफन मिन अल्लज़ीन कफरू, कि मैं काफरों का एक ग्रोह काट कर ले आऊं, और यकबता हूं फयन कालेबू खायबीन, या उनको मैं बिल्कुल हलाक कर दूं ताकि वो खायब व खासिर वापस जाएं। अब ये जो दूसरे दो मकसद और बयान किए हैं, एक मकसद था बशारत, दूसरा था दिलों का इत्मीनान, और तीसरा अब ये फरमाया कि मैंने इसलिए किया कि इस मंज़र को देख कर कि अल्लाह की मदद कैसे आती है, अल्लाह अपने बंदों के साथ किस तरह खड़ा होता है, तो तुम्हारे अंदर ये, काफरों के अंदर ये ख्याल पैदा हो कि अल्लाह इनके साथ है, इसलिए मैंने किया। अब ये जुमला है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि उहद की शिकस्त नहीं है, जिसको मौर्रखी ने शिकस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने उसमें ये दिखाया कि अगर ये मामला कुछ और होता तो ऐसे ना होता जैसा उहद में हुआ है, तो ये खुदा की तरफ से हुआ है। तो कई लोग जंगे उहद के बाद ईमान लाने वाले बने, ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि जिन्होंने जाना है वो खायबीन वापस जाएं। तो खायबीन कैसे वापस गए? अगर खालिद बिन वलीद की जंग का वो मंजर जो हमें सीरत की किताबों में लिखा हुआ मिलता है, वो तो ऐसा नहीं है। तो खुदा ने दो मकसद पूरे किए, एक ये कि हम मुसलमानों का दिल मुतमईन हो और वो जम कर लड़ें ताकि मोमिनीन का एक ग्रोह तैयार हो जाए, काफरों में से मोमिन निकल आए, और दूसरा ये कि जो बच कर वापस जाएं वो खायब व खासर वापस जाए। तो खालिद बिन वलीद खायबीन थे उस वक्त, अभी वो ईमान नहीं लाए थे, बाद में वो सहाबा में शामिल हुए और बड़ा मकाम पाया उन्होंने जंगों के अंदर। लेकिन बहरहाल उस वक्त, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, उस वक्त वो खायब व खासर वापस गए थे, अगरचे 60-70 लोगों को नुकसान पहुंचा गए थे। तो अब ये मामला जो है, इसको समझना चाहिए कि पीछे जो अल्लाह ताला ने बात कही थी कि तुम साबित कदम रहो हक पर, और यहूद के साथ इस वजह से दोस्ती ना करो कि तुम्हारा कारोबार कैसे चलेगा, तजारत कैसे चलेगी, दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, सब बर्बाद हो जाएंगी, दुनिया में नुकसान हो जाएगा, ये कैसे चलेगा, इसको ना घबराओ। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है और अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और अगर तुम्हें याद इनको कराओ कि मैं ये बात किस बुनियाद पर कह रहा हूँ, तो ओहद का वाक्य इनको सुनाओ कि ओहद में क्या हुआ था। तो सीरत के बिलखिलाफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ओहद में काफिर खाइबीन वापस गए थे और अल्लाह ताला ने काफिरों के दिल जीत लिए थे कि वो ईमान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये ओहद है। इस ओहद के हवाले से अल्लाह ताला ने यहाँ ये फरमाया है कि मैं यहूद तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे जिस तरह ओहद में कुरैश तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सके। मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं तुम्हारा वली हूँ, हौसला ना हारना, मोमिन हो तो मेरे ऊपर भरोसा रखना, लेकिन मेरा भरोसा पूरा करने की शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी करोगे तो भरोसा मैं तुम्हारा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर शर्तें पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, अलबत्ता गलती करने पर फिर पलट आओगे तो फिर मेरा साथ तुम्हारे साथ है। यहाँ रोक लेते हैं, वक्त हो गया। आखिर तमाम अलहमदिल्ला।